हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 27-28। स्पर्शान कृत्वा बहिर बाह्यास चक्षुः सैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर् मुनिर् मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य में जाने से पहले थोड़ा सा समझिए। निष्काम कर्म योग से जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, जो कि इस अध्याय में भगवान ने बताया था, तो व्यक्ति यहाँ भगवान बता रहे हैं उसके बाद वो योग्य बन जाता है कि वो अष्टांग योग का अभ्यास करके अपनी चेतना को भगवान की तरफ मोड़े और इंद्रिय वशों से खींच ले। और इसको विशद व्याख्या भगवान छठे अध्याय में करेंगे। और अगला श्लोक जो है, दैट मीन्स 29वां श्लोक, ये भक्ति योग का वर्णन होगा जिसके बारे में भगवान 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में बताएंगे। ठीक है, तो छठे अध्याय तक भगवान यहां बताए हैं कि किस प्रकार से निष्काम कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति अष्टांग योग या ज्ञान योग दोनों के लिए योग्य बनता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ है अष्टांग योग, परमात्मा का दर्शन हृदय में करने के लिए। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। यानी कि कृष्ण भावनामृत में पहले से ही व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में स्पष्ट धारणा से उसकी होती है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की सेवा करना। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यानी कि जब वो अभिधेय का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो महसूस होने लगता है हृदय में कि किस प्रकार से भगवान मुझको निर्देश दे रहे हैं और भगवान मेरे कर्तव्यों से प्रसन्न हैं। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, जो अन्य अनुस्वरूप हैं, जो हम सोच लिए हैं, उपाधियों को ग्रहण कर लिए हैं, उससे हम मुक्त हो जाएं, ये मुक्ति कहलाती है। यहाँ पे मोक्ष पराण शब्द को प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति योग ही करे, अन्य योग पद्धतियां भी व्यक्ति को भगवान की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन हाँ, भगवान भगवत गीता में ये स्पष्ट कर देते हैं कि भक्ति योग ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि कलयुग में तो अष्टांग योग पद्धति भले ही प्रमाणिक हो, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, हम सबके लिए करना बहुत मुश्किल है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। इसके संबंध में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में हम सीधे ही ध्यान के ऊपर चालू करते हैं, अपने ध्यान को लगातार भगवान के संपर्क में लाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले यम करें, नियम करें, आसन करें, प्राणायाम करें और उसके बाद भगवान का ध्यान करें, अपितु सीधे ही भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो सीधे ही हमारा ध्यान, हमारा मन भगवान में निवेशित होता है, जो किसी भी योग पद्धति का मुख्य मूलभूत उद्देश्य है। तो इसलिए भक्ति बहुत सुपीरियर है जैसे कहना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत शारीरिक चेतना से ग्रसित है, ये नहीं समझ पा रहा है कि वो आत्मा है और भगवान का अंश है और डायरेक्ट सेवा में नहीं लग पाता है, तो धीरे धीरे इस अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा भी वो शुद्ध हो सकता है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। इसको हमने समझाया था कि इन 27 और 28 श्लोकों को में जो भगवान ने अष्टांग योग की जो बात बताई है उसको बहुत गहराई में भगवान छठे अध्याय में चर्चा करेंगे। पांचवें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। प्रत्याहार का अर्थ है इस समय बद्ध चेतना में हमारी इंद्रियों की नैसर्गिक प्रवृत्ति इंद्रिय भोग के विषयों की तरफ जाती रहती है, जो कि देखने के होते हैं, देखने के, सूंघने के, सुनने के, चखने के इत्यादि होते हैं, ज्ञान इंद्रियों की तरफ जाती रहती हैं। तो अब इसके द्वारा क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, अपनी पहले हम इंद्रियों को वश में करते हैं और फिर धीरे धीरे मन को सीधे इन इंद्रियों के विषयों से खींच करके भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए जब हम लोग जप करते हैं तो इस तकलीफ का, इस स्ट्रगल का अनुभव हम सब लोग करते हैं, संघर्ष का अनुभव हम सब लोग करते हैं और हम लोग जैसे कहते हैं जप कर रहे हैं लेकिन मन भगवान में नहीं लग रहा है। तो इसको हमें सीखना चाहिए कि इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा दिन जो है उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां किन कार्यों में लगी हैं। अगर ज्ञानेंद्रियां लगातार भोगों में लगी रहेंगी, भौतिक कार्यों में लगी रहेंगी, तो स्वभाव है, नेचुरल सी बात है कि जब हम जप करने बैठेंगे तो हमें उन्हीं बातों का स्मरण होगा जिनको हमने देखा है, उनको सूंघा है, सुना है, चखा है, ऐसे इत्यादि। तो रियली हम अच्छे से साधना करना चाहते हैं तो हमको ऐसी परिस्थिति में रहना चाहिए कि जहाँ पे हमको भोगों की जो वृत्तियाँ हैं उससे अधिक से अधिक दूर रह सकें। अब ये कैसे करेंगे ये हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग परिस्थिति में देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम व्यक्ति जब घर में आए तब भोग के वातावरण से व्यक्ति को दूर रहना पड़ेगा। और थोड़ा कठोर बात है लेकिन यहां शब्द आ रहा है स्पर्शान, और स्पर्श से पुरुष संघ या स्त्री संघ को दर्शाया जा रहा है। और जब व्यक्ति, जब आत्मा इन क्रियाओं में अधिक से अधिक लगता है तो उसका हृदय बहुत बद्ध हो जाता है शारीरिक चेतना में। तो जो योगी जन है वो इस इंद्रिय तृप्ति को, मैथुन की प्रक्रिया को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में मैथुन क्रिया का उपयोग ना के बराबर ही होना चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं। और जो व्यक्ति इससे जितना निवृत्त होगा उतना ही वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए गृहस्थ भक्तों को, अष्टांग योग में तो गृहस्थों का आने का कोई मतलब नहीं है, भक्ति योग में व्यक्ति स्वभाव अपने आप ही इस इच्छा को त्याग देता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने समझाया था कि गृहस्थों को भी केवल महीने में एक बार ही संग करना चाहिए और वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। तो एक शिष्य ने पूछा इससे अच्छा है कि मैं शादी ही नहीं करूं, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा होगा, प्रभुपाद जी ने सब बोला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस इच्छा को पूर्ण नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल निवृत्त नहीं है, तो वो शादी कर सकता है लेकिन उसको नियमित जीवन जीना चाहिए। उसको भगवान गीता में भी बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो अगर कोई व्यक्ति अनियमित जीवन जीता है, मैथुन जीवन करता है, तो उसके लिए योगी बन पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है, न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। तो ये तो स्पष्ट है, बहुत से लोग ध्यान करते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं और वो सो जाते हैं, तो ये उद्देश्य नहीं है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि आंखों को बहुत इधर उधर लेके जाएंगे तो भी हमारा जो चेतना है वो बाहर की ओर भागेगी, इसलिए अगर आप चल के भी जप कर रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए कि पूरा से कहते हैं राडार जप, दुनिया का दर्शन करते हुए नाम जप ना करा जाए, थोड़ा अंतर्मुखी होते हुए धरती को नीचे देख की तरफ देखते हुए नाम जप करना चाहिए। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रियों इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो यह अष्टांग योग की तरीका है। जब व्यक्ति प्राणायाम इत्यादि करता है तो उससे उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन भक्ति योग में मन को सीधे भगवान में लगा जाता है और मन अपने आप शुद्ध हो जाता है, और जैसे जैसे मन शुद्ध होने लगता है तो भगवान में आविष्ट होने लगता है। मन का जो मल है वह है उसकी चंचलता, जो कि रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है। तो फिर व्यक्ति जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता जाता है भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा, तो अपने आप धीरे धीरे करके उसका मन भगवान के नाम में आविष्ट होने लगता है। उसके लिए धैर्य से भक्ति को करते रहना चाहिए। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। क्यों भय से मुक्त हो जाता है और क्रोध से मुक्त हो जाता है? क्योंकि ये सब शारीरिक चेतना के कारण होता है। जब हम शरीर में आसक्त होते हैं, इंद्रिय भोगों में आसक्त होते हैं, तो भय और क्रोध होना स्वाभाविक होता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। इस बात को आगे भी भगवान बताएंगे। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने अपने मन को जीत लिया है तो अपने आप ही वो भगवान का दर्शन हृदय में कर पाएगा। तो भगवान का दर्शन हम क्यों नहीं कर पाते हैं, इसको हमने पहले भी समझाया था। क्योंकि हमारी चेतना बहिर्मुख है और जैसे जितनी जितनी हमारी मात्रा में हमारी चेतना शुद्ध होगी उतना ही भगवान की अनुभूति अपने हृदय में हम कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। योग का सिद्धांत है अपने मन को भगवान में लगाना। तो कृष्ण भावना में हम सीधे भगवान के संपर्क में आते हैं। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, यानी कि योग पद्धति की, अष्टांग योग पद्धति की व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो लोग बाग अष्टांग योग के बारे में जान जरूर सकते हैं और जानना चाहिए, और इसका उपयोग किंचित मात्रा में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन इसलिए ये मत सोचिए कि अष्टांग योग की विधि जो है उसके द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो कलयुग में केवल एक ही विधि है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते विगतिरर्था अन्यथा। भगवान हरि का नाम ही एकमात्र तरीका है। तो इसलिए इन चीजों को आप जान सकते हैं अगर आपकी जिज्ञासा है, लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक नहीं होगा। नाम उच्चारण करके ही व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। कुछ चीजें जरूर हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम जप कर रहे हों तो सीधे बैठे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोलते हैं कि नाम उच्चारण करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सीधे बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, और दोनों हाथों को घुटने के पास रखें ताकि खुला हुआ पोस्चर रहे, ताकि आपको नींद नहीं आएगी। अगर नींद आएगी तो कम से कम मालूम चल जाएगा कि मुझे नींद आ रही है। तो ये चीज कर सकते हैं। और अगर हरे कृष्ण मंत्र का कुछ लिखा हुआ आपके पास एक पोस्टर हो और उसको देखते हुए जब करें तो आंखें इधर उधर भटकेंगी नहीं, और हरे कृष्ण मंत्र लिखा होने के कारण मन भगवान में लगाने का आसान रहेगा। अंततोगत्व भक्त जानता है कि उसका मन भगवान में तभी लग सकता है जब भगवान की पूर्ण कृपा उसके ऊपर होगी। तो अपना प्रयास करता है, लेकिन प्रार्थना भगवान से ही करता है कि भगवान मेरे हृदय को आप अपनी तरफ खींचिए, और ताकि मुझे माया का स्मरण नहीं हो, जगत का स्मरण नहीं हो। तो खैर, ये शरणागति का भाव तो भक्ति का मुख्य अंग ही है, मुख्य धरातल है कहना चाहिए, अंग नहीं कहना चाहिए। तो उसके बारे में चर्चा तो आगे की जाएगी। हरे कृष्णा।